हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 7। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहैतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। आज शिला गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज का तिरोभाव दिवस है। उनके गुणगान में, उनके प्रणाम मंत्र में हम कहते हैं, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पादांबुजायते नमः। नमो गौर किशोराय, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी को हम प्रणाम करते हैं। साक्षात वैराग्य मूर्तये, साक्षात वैराग्य के वो मूर्ति थे। विप्रलंब रस अंबोधे, और विप्रलंब रस के सागर थे, वो आस्वादन कर रहे थे। पादाम्बुजायते नमः, उनके हम चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो मैंने सोचा संक्षिप्त रूप में आज हम चर्चा करेंगे कि वैराग्य है क्या, क्यों वैराग्य हमें प्राप्त करना चाहिए, वैराग्य है क्या और उसे कैसा प्राप्त किया जाए। वैराग्य एक बहुत ही एक ऐसा गुण है जिसको लोग बहुत सम्मान देते हैं, और ये एक ऐसा गुण है जो लोगों को बहुत आकर्षक करता है, आकर्षित करता है। भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, जनसाधारण में भी, भारत में गांधी जी को बहुत सम्मान देते थे, पिता मानते देश के, राष्ट्रपिता। लोग उनसे आकर्षित इसलिए हो रहे थे कि वो चाहते तो कोई भी पदवी, देश का सबसे जो श्रेष्ठ पदवी है, उनको लोग देने के लिए तैयार थे। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, जो भी कोई भी पदवी सिर्फ वो चाहते तो प्राप्त कर सकते थे। पर क्योंकि उन्होंने बहुत ही सरल जीवन जिया और सारे पदवी से निराशक्त थे, और देश की सेवा के लिए वो अपना जान देने के लिए तैयार थे, इसीलिए लोग आज भी उनको गुणगान करते हैं कि वो इन चीज से पावर, जो पदवी या उससे जो सौलभ्य मिलता है, उससे वो निराशक्त थे, वैराग्य। और उनका जीवन भी बहुत सरल था, उनका वस्त्र भी बहुत सरल था। तो साधारणतर किसी के जीवन में भी लोग ये देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं और सम्मान देते हैं लोग। ये सिर्फ ये वस्त्र को, गिरवा वस्त्र जो है, उस वस्त्र को जो भी पहनता उसको सम्मान देते हैं, उस व्यक्ति में हो या ना हो लक्षण, पर सिर्फ वो वस्त्र, क्योंकि वस्त्र जो है वो वैराग्य का प्रतीक है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग मैं खास कृष्ण प्रेम देने के लिए आया हूं, साक्षात भगवान है वो, उनके प्रति अपराध करने लगे वो, तो बोलेगा ऐसा वो तो उल्टा असर पड़ जाएगा, उनका उद्धार करने के बदले वो तो अधोगति हो जाएगी उनकी। तो बोले कम से कम अगर मैं संन्यास लूंगा तो संन्यासी समझकर कम से कम वो लोग मुझे प्रणाम करें, वो अनिवार्य है, और मेरे सामने कम से कम सर झुकाने से भगवान के सामने उनका उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो ये वैराग्य जो है इसको लोग सम्मान देते हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक्चुअली भगवान की ही एक ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से समाग्र से वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य उच्चैव शरणम भाग इतिंगण, ये भगवान का ही एक्चुअली एक वैराग्य ऐश्वर्य है, और जो भी ये ऐश्वर्य प्रदर्शित करता है कुछ मात्रा में भी, तो लोग उस चीज से स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। भर्तृहरि वैराग्य शतक में एक सुंदर श्लोक कहते हैं, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्वम वस्तु भयम इदम भुविनाम वैराग्यमेवा भयम। कि हर एक व्यक्ति भयभीत है संसार में, भोगे रोग भयम, जो भोगी है उसको रोग का भय है, डायबिटीज हो गया तो शक्कर बंद, हाइपरटेंशन हो गया तो नमक बंद, और नमक और शक्कर बंद तो फिर जीवन गधे का समान काम करके फायदा क्या, खा नहीं सकते पी नहीं सकते सिर्फ ब्रेड खाते रहो तो भोगे रोग भयम, भोगी को रोग का भय है। कुले च्युति भयम, करोड़ों रुपया जिसने कमाया है उसको एक पुत्र नहीं हुआ प्राप्त हुआ तो डर है उसको, क्योंकि पुत्र नहीं तो सारा संपत्ति किसी और को चला जाएगा। कुले च्युति भयम, और मेरा कुल का क्या होगा, मेरा हमारा कुल जो पवित्र कुल है ये वंश का क्या होगा, वो वंश क्यों महान है, क्योंकि मैं पैदा हूं मेरा भारत महान क्यों, क्योंकि मैं पैदा हुआ ना भारत में तो कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम, वित्ते जिसके पास पैसा है सरकार का भय है उसको, नृपालाद भयम, कोई एक नया पॉलिसी कर देंगे सब कुछ छीन लेंगे, ये टैक्स वो टैक्स, परमिट 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 के लिए मरमिट वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम, जिसको एक बार मान दिया गया है, सम्मानित है किसी कारणवश, शक्ति के कारण यश के कारण, तो अगर अपमान हो गया उसे ले लिया तो फिर दैन्य भयम, अगर गरीबी आ गई तो सबसे बड़ा भय उसको है कि लोग के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। माने दैन्य भयम बले रिपु भयम, बहुत शक्तिशाली है उसको, उससे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली व्यक्ति से भय है। बले रिपु भयम रूपे जराया भयम, बहुत सुंदर है देखने में, उसको बुढ़ापा का भय है। एक बहुत ही फेमस फिल्म एक्ट्रेस थी, उसने जब पहले आईने में देखा उसका थोड़ा ऐसा चेहरा जो है सिकुड़ गया है बुढ़ापे के कारण, वो घर से बाहर नहीं आती थी, भय कि मेरे लोग को पता चल जाएगा कि बूढ़ी हो गई है, उसकी सुंदरता चला जा रहा, सारा ब्यूटी पार्लर सारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी के भय पर चल रहा है। लेकिन लोग क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या अलग अलग प्रकार के 10 प्रकार के अलग अलग चीज लगाते हैं सिर्फ उसको बनाए रखने के। रूपे जराया भयम शास्त्रे वादी भयम, जो बहुत सारा शास्त्र जानता है, कोई दूसरा वाद आएगा मायावाद से मेरे को हरा देगा, ये वाद से वो वाद तत्वाद अलग अलग वाद से वादी भयम, कोई वाद अलग वाद से मेरा वाद को खत्म कर देगा, वो भय रहता है उसको। शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम, जो बहुत गुणवान है उसको डर है कि उससे भी ज्यादा गुणवान कोई आएगा और उसको धोखा दे देगा। गुणे खलवय काये कृतांता भयम, और जिसको शरीर मिला है तो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, क्योंकि मृत्यु आ गया तो जिस चीज के लिए इतना सारा परिश्रम किया उसका आधार है शरीर, वही चला जाएगा तो फिर रहा क्या। तो काय करता सर्वम वस्तु भयम इदम भूविनाम, पूरे भूमि में पूरे संसार में हर एक व्यक्ति कुछ खोने का भय है उसको, ये चला जाएगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा तो क्या होगा। वैराग्य में वा भयम, कोई कौन व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्भय है, जो वैराग्य है जिसमें पूर्ण रूप से निराशक्त है, आसक्ति है ही नहीं उसको, कुछ है ही नहीं उसको, फिर खोने का क्या डर है। एक भिखारी आराम से सोया रहता है सड़क पे, क्योंकि उसको मालूम है क्या कौन छीनेगा, उसका है ही नहीं एक कॉपी, वो भी इतना फटा हुआ है कौन छीनेगा उसका, वो लंगोट भी किसी और का उठाया हुआ पहना हुआ है, फेंका हुआ चीज, वो आराम से सो सकता, कोई चिंता नहीं। तो वैराग्य में वा भयम, तो ऑफकोर्स हर एक ये वैराग्य क्यों प्राप्त करने की हम इच्छा कर रहे हैं। महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान तहा देखे प्रीत है गौरव भगवान। एक्चुअली हम लोग वैराग्य प्राप्त करने की जो इच्छा है हमें वो ये है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं उस वैराग्य से आकर्षित होते हैं, इसलिए हमको वैराग्य प्राप्त करना है। जहां देखे प्रीत है गौरव भगवान, चैतन्य महाप्रभु भक्तगण है वैराग्य प्रधान, और जब अपने भक्तों के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु वैराग्य देखते हैं तो उससे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी साक्षात अनादर वैराग्य मूर्ति, वो जो तेलंगा गाय जगन्नाथपुरी के सड़े हुए प्रसाद को जब फेंका हुआ उसको भी जो निरर्थक समझकर थूक देती थी, उसको रात में जाकर लेकर थोड़ा पानी से साफ करके अंदर का जो हिस्सा है उसको खाते थे वो। और श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन छिपके आए और छीन लिया उनके हाथ से और उसको खाए और बोले आज तक मैंने अलग अलग प्रकार के बाहर रख दीजिए प्रभु जी, हाँ उधर तो मैंने ऐसे जगन्नाथ जी का बहुत सारा प्रसाद को चखा हुआ है पर ऐसा प्रसाद मैंने कभी आस्वादन नहीं किया। महाप्रभु ने कहा क्योंकि क्या आस्वादन कर रहे थे वो एक्चुअली उनका वैराग्य, रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य का आस्वादन कर रहे थे। तो अंततः हमको वैराग्य प्राप्त करना है भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, हमको और कुछ लेना देना नहीं है वैराग्य से, हमको एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो कृपा देते हैं, और वो प्रसन्न होते हैं जब हमारे हृदय में वो वैराग्य देखते हैं। तब सवाल उठता है कि वैराग्य है क्या, एक्चुअली वैराग्य है क्या। बताया गया दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब कृत्रिम वैराग्य, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। प्रापंचिकतया बुद्ध्या, भौतिक बुद्धि के कारण कि ये सब भौतिक चीज है, भूमि जल अग्नि वायु ये सब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये भावना से प्रापंचिकतया ये सब भौतिक है ये सब तुच्छ है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या ऐसी बुद्धि से हरि संबंधी वस्तुनः, हरि से संबंधित कुछ चीज जो हरि के संबंध में उपयोग किया जा सकता है ऐसे चीजों को, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ एक्चुअली भगवान से आया हुआ है, और भगवान से आया हुआ होने के कारण भगवान पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उनसे सब कुछ आया है। हर एक का कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य को न जानकर किसी चीज को भगवान से अलग समझकर मुमुक्षु भी परित्यागो, मुक्त होना है इस भावना से परित्यागो, इसको त्याग देते हैं तो वैराग्य वैराग्यम फल्गु कथ्यते, वो फल्गु वैराग्य। कुछ लोग शरीर को एकदम सुखा के खत्म कर देते हैं, क्यों? क्योंकि शरीर भौतिक है, पर ये शरीर, हाँ ये भौतिक है, यही एक्चुअली सारे बंधन का कारण है, ये सब कुछ है, पर साथ साथ में इंद्रदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, प्लवम सुकल्पम एक बहुत बड़ा उपहार है, देन है, दिव्य एक उपहार है भगवान का, भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। तो इससे निराशक्त होना और इसको इसको नकार देना वो फल्गु वैराग्य। हर एक चीज का एक उपयोग है, सृष्टि में कोई भी चीज है उसका एक उपयोग है, और जिस लिए बनाया गया है उसको उपयोग करना ठीक है, पर उसके उपयोग को न जानकर उसको नकार देना वो फल्गु वैराग्य। ऑफकोर्स भोग करने से अच्छा है त्याग। जैसा प्रभुपाद कहते हैं कि एक आदमी जा रहा था तो उसने सड़क पे एक बटुआ देखा जिसमें 5,000 रुपया समझ लीजिए, तो एक आदमी कहता है कोई देख नहीं रहा है, बस जेब में रख लिया, तो ये भोगी है। तो दूसरा आता है, वो तो बहुत पैसा है, कोई है नहीं, तो मेरा भी नहीं है, छोड़ दिया। तीसरा आता है और कहता है बहुत सारा पैसा है, मेरा नहीं है, पर किसी का तो होगा, वो अगर यहां छोड़ दूंगा तो उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो इसीलिए पता करके एड्रेस में जाके दे देता है उसका किसका है। रूपा ने पूछा इन तीनों में कौन सा श्रेष्ठ है, बोले तीसरा, दूसरा अच्छा है, कम से कम छूता नहीं, मेरा नहीं है। तेन त्यक्तेन ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृदः कस्य सिद्धनम्, मेरे लिए जितना चाहिए उतना मैं ले लिया, अच्छा है, बेटर देन भोगी, भोगी से तो अच्छा है कम से कम, कोई नहीं देख रहा है, चंद्रमा में जाके झंडा गाड़ दिया, मेरा चंद्रमा है, कौन सा बड़ा, तुम मरने से पहले, तुम जन्म लेने से पहले भी चंद्रमा था, तो मरने के बाद भी वो झंडा लटके रहेगा, पर तुम नहीं रहेगा उधर, पर बीच में आया झगड़ा करके, मेरा झंडा, सब अपना अपना झंडा गाड़ के चले जाते बस, पर वो है, रहता भी था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहने वाला है, बीच में आके सर मेरा मेरा बोल के झगड़ के चले जाते बस। बंबई में होता है सीट के लिए, छोटा ट्रेन में, लोकल ट्रेन में सीट के लिए झगड़ा होता है, दो स्टेशन में बैठना है आओ, उसके लिए इतना झगड़ा, दोनों झगड़ के एक दूसरे का कॉलर पकड़ के, सीट खाली है, दोनों झगड़ रहे, और स्टेशन आ गया, उतरने के बाद भी झगड़ रहे, गाड़ी चला गया, उस सीट के लिए झगड़ रहे जिसका, कभी कभी दो परिवारों के बीच चल रहा है झगड़ा, क्यों चल रहा है, क्योंकि मेरे दादाजी ने तेरे दादाजी का वो लिया था, वो प्रॉपर्टी भी सरकार ने ले लिया और दादाजी भी चले गए, इनका झगड़ा अभी भी चालू है, जहां माना वो मतलब पारिवारिक दुश्मनी अभी भी चालू। तो ये फल्गु वैराग्य है, पर अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त होकर यथारहम उपयुंजतः, जितना हमारे लिए उपयुक्त है उतना ही स्वीकार करना। निर्बंध कृष्ण संबंधे, कृष्ण के संबंध में जो कुछ है, जितना जरूरी है, जितना अनुकूल है, उतना स्वीकार करना। युक्तम वैराग्य मुच्यते, ये एक्चुअली सच्चा वैराग्य है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं विषय विषय मतलब इंद्र तृप्ति, इंद्र तृप्ति को एकदम त्याग देना लोग समझते बहुत बड़ा वैरागी है, पर एक्चुअली वो वैरागी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, बाद में छिप छिप के और कुछ करेगा वो, बस बाहर से ऐसा वैरागी और अंदर से उसका कुछ और, हिपोक्रेसी, दाम्भिकता, ये भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। अनासक्त से विषयान यथार्थम उपयुंजता, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कितना इंद्रियां है तो इंद्रियों को तृप्त करना जरूरी है, इंद्रियों को तृप्त करना जरूरी है, तो इंद्र तृप्ति कोई बुरा नहीं है, पर तीन चीज भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तीन चीज होना चाहिए। नंबर एक, जरूरत से ज्यादा नहीं, जितना जरूरी है शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए, उतना अगर इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विषय स्वीकार, अत्याहार, अति आहार, आहार का मतलब दो होता है, आहार का मतलब खाना और आहार का मतलब इंद्रियों को विषयों के वस्तु, इंद्रियों को विषय, आंखों को कुछ अच्छा चीज देखना चाहिए, कान को कुछ अच्छा चीज सुनना चाहिए, नाक को कुछ अच्छा चीज सूंघना चाहिए, जिह्वा को कुछ अच्छा चीज खाना चाहिए, त्वचा को कुछ स्पर्श इंद्र चाहिए। मूर्ख व्यक्ति समझता है, कोई बोलता है कि नहीं इसको चार पांचों को कुछ नहीं है, एकदम ऐसा करके मर जाएगा वो, शरीर को मेंटेनेंस भी नहीं करने होगा, शरीर यात्रा भी चते ना प्रसिद्ध अकर्मण। पर अति आहार उसे नहीं, तो अति कब है, जरूरत से ज्यादा, तो कितना जरूरत है वो आपके ऊपर निर्भर है, प्रामाणिकता के ऊपर। भीम टन भर खाता था वो, भीम कर्मा वृकोदर, काम भी वैसा करता था, और रघुनाथ दास गोस्वामी छाछ पीते थे बस इतना, तो इसका मतलब क्या भीम विषय भोगी था नहीं, काम भी ऐसा करता था ना, 10,000 हाथी का काम करता था, 10,000 हाथी जैसा खाता था भी था, ठीक है आप अगर इतना काम कर रहे तो खाओ। नहीं तो जितना जरूरी उतना, तो जरूरत से ज्यादा नहीं। दूसरा, प्रतिकूल चीजों को नहीं लेना है, बस इंद्रियों को, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चाहिए जो प्रतिकूल है, भगवान की भक्ति जो लक्ष्य को रखकर जो उसके लिए प्रतिकूल है उन चीजों को त्याग देना, और जो अनुकूल है उन चीजों को स्वीकार करना, और तीसरा जो अनुकूल चीज भी स्वीकार कर रहे हैं उसको भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना। बोले अगर ये तीन चीज रहेगा तब विषयों को नियंत्रण कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा नहीं, और जो जरूरत की चीजें ले रहे हैं वो अनुकूल चीज होना चाहिए, और तीसरा, भक्ति विनोद ठाकुर यहां कहते हैं इस भजन में, गौरव ही तो है शात, गौर के जो गौर आमा के उनको जो अच्छा लगता है वो शाक से बने, जीवन कृतार्थ माने, तो भगवान को भोग लाए प्रसाद वो अनुकूल है, उसको स्वीकार करेंगे। जो भी अनुकूल चीज यहां लिखा गया है भजन अनुकूल, अनुकूल है, उन सबको हम स्वीकार करेंगे और उसमें आनंद लेंगे, उसमें आनंद है, कीर्तन में आनंद है, इसमें आनंद है, उन चीजों को जितना जरूरी है, जो जरूरी है, जो अनुकूल है, और जो अनुकूल चीजों को भी स्वीकार कर रहे हैं जितना जरूरी है, वो भी भगवान की कृपा के रूप में कृतज्ञता पूर्वक, तार मध्य जीवातिलो ताके जीता कठिन संसार, कृष्ण बड़ा दयामय कोरी बारे जी, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई श्री अनामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमी डाको चैतन्य निता, इस भावना से कृतज्ञता पूर्वक जितना जरूरी, जितना अनुकूल, जो अनुकूल है वो भी कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करेंगे, तो वो युक्तम वैराग्य मुच्छते, युक्त वैराग्य है वो, और तब न हमको आसक्ति है न निराशक्ति है, क्योंकि निराशक्ति से भी आसक्ति हो सकती है, हम सब चीजों से निराशक्त हैं पर निराशक्ति से आसक्त हो गए। एक बार एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग गए, तो एक बार ऐसे भ्रमण करते करते साधु किसी के घर में जाते हैं, तो एक राजा के यहां गए तो वो राजा ने पहचान लिया, अरे वो आप तो चक्रवर्ती सम्राट थे, आइए आइए, और उनको अपने आसन पर बैठा दिया और उनका चरण धोया, सब कुछ प्रणाम किया और बोला, महाराज आप कितने बड़े त्यागी हैं, आपने पूरे पृथ्वी के साम्राज्य को त्याग दिया, बहुत बड़े वैरागी हैं आप। तो वो चक्रवर्ती सम्राट जो आज एक सन्यासी बन गए थे, उन्होंने राजा की ओर मुड़कर देखा, नहीं नहीं राजन, मैं वैरागी मैं नहीं हूं, वैरागी तू है, तू मेरे से बड़ा श्रेष्ठ वैरागी है। मैं नहीं नहीं मैं तो भोगी हूं, नहीं नहीं तू वैरागी है, तू सबसे बड़ा वैरागी, मेरे से ज्यादा वैरागी है तू, नहीं 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 नहीं, अरे हाँ, बोले क्यों? बोले मैंने कांच के टुकड़े को त्यागा एक हीरे प्राप्त करने के लिए, पर तूने हीरा को छोड़ दिया इस कांच को टुकड़े लेने के लिए, तू बड़ा वैरागी है, तूने बड़ा चीज का त्याग किया है। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी की पदवी, ब्रह्मा जी से भी एक सादा पदवी, उसकी प्राप्ति के लिए आया था आपके पास, पर अब आपकी भक्ति का जो हीरा मिल गया है, अब काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, कांच को ढूंढते हुए आया था, अभी हीरा मिल गया है, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे कुछ नहीं वर चाहिए वर। विधि महेंद्र आदिश्च कीटायते, जिसको भगवान की भक्ति का हीरा मिल गया है, विधि महेंद्र आदि, विधि और महेंद्र की जो पदवी है ब्रह्मा जी की, और कीटायते कीड़े के समान है। तो ये राजा ने कहा कि तूने एक राज्य की लालच के लिए भगवान को छोड़ दिया, तू बड़ा वैरागी है, बड़ी चीजों को त्याग दिया तुमने। मैंने क्या त्यागा, मैंने कुछ ऐसी चीज को त्यागा जो मेरा है ही नहीं। सबसे पहले एक बार एक भक्त कीर्तनानंद प्रभुपाद जी के पास गए, शुरू शुरू में एकदम 1966 में, तभी तभी ये शुरू हुआ था, और कीत हैम उनका नाम था, उनको कीर्तनानंद नाम दिया था, और वो गए प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी को जाकर कहे, प्रभुपाद मैं सब कुछ त्याग देना चाहता हूं और आपकी शरण में आना चाहता हूं, भगवान की सेवा में लगना चाहता हूं। और उनको अहंकार हो गया था, उनको एक तरह का सूक्ष्म रूप से अहंकार लग रहा था, सब कुछ त्याग दे रहा हूं भगवान के लिए। तो प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या किया, वो बड़ा बलून का हवा निकाल दिया, बोला तुम्हारा है क्या त्यागने के लिए, और तुम्हारा है क्या, ये शरीर तुम्हारा है, तेरे मां बाप ने दिया, वो भी भाड़े पे लिया है 200 साल के लिए, तेरा नहीं है, बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मी बलम बल बताम चाहम, वो सब भगवान का है, तू कौन सा है क्या, गंगा का पानी गंगा में डाल रहा, बहुत बड़ा काम कर रहा है तू। बोला उन्होंने कहा, बोले मैं त्याग रहा हूं, ये भावना त्याग दे बस, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूं, ये भावना त्याग दे। अगर मैं आपके घर में आता हूं, आपका टीवी उठाता हूं और बाहर आके कहता हूं ये मैं त्याग रहा हूं, वाह, एक तो चोरी का माल और बाद में त्याग रहा है, कौन सा बड़ा काम कर रहा है तू। तो दूसरा प्रभुपाद उदाहरण देते, अगर मैं बड़ा हांगकांग बैंक के पास जाऊंगा नारीमन पॉइंट पे बॉम्बे, और खड़ा होकर बोलूंगा ये सारा हांगकांग बैंक में जितना भी पैसा है ना मैंने त्याग दिया, तेरा था क्या जो तूने त्याग दिया। तो क्या त्यागना है, ये अहंकार भाव, एक्चुअल ये अहंकार भाव को त्यागना है, ये मेरा कुछ भी है। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, कुंती महारानी कहती है, जन्मैश्वर्य सुतश्री भीर एध मान मदह पुमान नैव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। अकिंचन, अकिंचन मतलब जिसको मालूम है, किंचित मतलब कुछ तो, अकिंचन मतलब एक्चुअली कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है ठीक है, ये घर क्या है, ये बीवी बच्चे, ये घर भगवान का है, ये बीवी बच्चे उनके सेवक हैं, और मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं केयर टेकर हूं, और वो जैसा चाहते हैं वैसे, वो जैसा आदेश दिए हैं उसके आधार पर ये घर चलेगा, इस घर में वही चीज खाया जाएगा जो पहले वो टेस्ट करेंगे, इस घर में वही चीज बातचीत होगा जो उनको प्रसन्न होता है, इस घर में वही वस्त्र हम लोग पहनेंगे जो उनको सम्मत है। ये युक्त वैराग्य है। और तब चाहे आप करोड़पति हो या अरोड़पति, किसी अवस्था में सच्चे वैराग्य, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वैराग्य है। और सबसे बड़ा वैराग्य है ये अहंकार भाव को त्याग देना। तो जिसने ये अहंकार भाव को त्याग दिया है वो सबसे बड़ा वैराग्य है। ये सच्चा वैराग्य, एक्चुअली दिस इज द परफेक्शन। इसीलिए सबसे बड़ा वैराग्य का श्लोक क्या है, तृणादपि सुनिचे न तरोरी व सहिष्णा वानिना मानवे न कीर्तनीय सदा। ये वैराग्य का सूत्र है, तृणादपि सुनिचे न नम्र, क्योंकि जब समझ जाता है कि कुछ भी मेरा नहीं है तो नम्र हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किस चीज का गर्व है उसको? गर्व उसी चीज का है जो मेरा है। मेरा है क्या? आत्मा भी मैं नहीं हूं, आत्मा भी जो भगवान कहते हैं ममैव अंश, उन्हीं का अंश है। शरीर नहीं है मेरा, बुद्धि नहीं है मेरा, किस चीज का अहंकार होना? तृणादपि सुनिचेन, और तरोरी व सहिष्णु, स्वाभाविक रूप से वो सहिष्णुता हो जाता है एक नम्र व्यक्ति। अमानिना, मान की अपेक्षा ना करते हुए, मान देना कीर्तनीय। इसलिए सारे धर्म ग्रंथ में एक चीज, डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मरना चाहिए हमको। हाँ, मरने से पहले मरना चाहिए? बोले हां, मरने से पहले मर जाना चाहिए। ये शरीर को मृत्यु जब आता है उससे पहले ये अहंकार निकल जाना चाहिए। अभी भक्ति तीर्थ महाराज ने बहुत सुंदर एक दो सीरीज लिख रहे हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर बेगर बोल के, उसमें लास्ट सीरीज अभी शरीर छोड़ने से पहले वो लिखे। वो बोले सितंबर 5, 2004 इस दिन मैं मर गया। मर गया मतलब ऑफकोर्स संन्यास जब लेते उस समय भी मंत्र बोलते हैं कि मर गया अभी, तो मर गया मतलब उसमें लिखते हैं ऐश्वर्य से समाग्र से वीर से यश श्री ज्ञान वैराग्य शरणम भाग इतिंगण। तो अगर किसी के पास ऐश्वर्य है लोग उसके पीछे पागल हैं, ऐश्वर्य से यश के पीछे पागल है, सुंदरता के पीछे पागल है, ज्ञान ज्ञान के पीछे पागल है, और वैराग्य के पीछे भी पागल है लोग। मैं सबसे ज्यादा वैरागी हूं, मैं सबसे ज्यादा एकदम निरासक्त हूं। तो बोले ये एक चीज छोड़ देना, इनडिफरेंट, ये एक्चुअल वैराग्य है। तो अब सवाल उठता है ये वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि यही श्री चैतन्य महाप्रभु को आकर्षण करता है, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रथा। तो कैसा प्राप्त किया जाए? सारे आचार्य उसके उदाहरण है। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रितौ गोपी भाव रसामृताभिरहरी कल्लोल मग्नौ मुहुर् वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। आप गौर किशोरदास बाबा जी के जो प्रणाम मंत्र है और षड गोस्वामियों के जो अष्टक है, ये दोनों में वैराग्य की बात जहां हुई है वहां दो चीज आया है। एक, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रस अंबोदे पदाम्बुजाय ते नमः। जहां वैराग्य आया है तुरंत वहां एक रस का बात आया है। जैसा त्यक्त षड गोस्वामी का लीजिए, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत्। क्या ऐश्वर्य था उनका, कितने बड़े विद्वान थे, सदा तुच्छवत उन्होंने त्याग दिया। क्यों? भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठाश्रित। कौपीन और एक वस्त्र को त्याग किए, क्यों? करुणया, हृदय में करुणा के कारण लोगों को देने के लिए, यहां तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत ईप्सित अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो ये वैराग्य अगर कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली कपड़े बदलने से या सर मुंडवाने से या कुछ प्रकार का वचन बोलने से या रहन सहन से कोई अगर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित रूप से वो फेल होगा। ये जो है स्वाभाविक रूप से आएगा। ये कब? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी हमको रस है किस चीज में? विषय तृप्ति, इंद्र तृप्ति में। दी कल्मिनेशन विषय भोग का पराकाष्ठा भौतिक जो है वो सेक्स लाइफ है, मैथुन जीवन। मैथुन जीवन जो है वो भौतिक स्थूल इंद्र तृप्ति का सर्वश्रेष्ठ चीज माना जाता है। इंद्र जो है वो दक्ष है, वो एकदम इन चीजों को भोग करने में बेस्ट, एकदम बेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन उसको प्राप्ति है। और फिर सूक्ष्म मैथुन जीवन, और वो क्या है? पूजा लाभ प्रतिष्ठा। तो ये दो चीजों को जो त्याग दिया है, अच्छा ये दो चीज त्याग नहीं सकते, बहुत मुश्किल है ये। कितने लोगों ने, विश्वामित्र मुनि ऐसे ऐसे लोगों ने इंद्रियों को संयम करके रखा, थोड़ी सी काम वासना खत्म। जिन्होंने बड़े बड़े वैराग्य के सागर को पार किया था वो क्रोध के चुल्लू भर पानी में डूब के मर गए। काम क्रोध लोभ में आकर, मोह में आकर, मात्सर्य। तो ये सब तभी दूर होगा, अपने आप, अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कोशिश किस चीज का करना है? कोशिश करना है जब तक इन चीजों में रस का आस्वादन हो रहा है, मैथुन जीवन सूक्ष्म या स्थूल में जब तक रस मिल रहा है हमको, तब तक उसको त्यागना मुश्किल है। बाहर रूप से नहीं 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 बोल के आंख बंद करके नाक बंद करके रहेंगे और बाई चांस खुल गया फिर से चले गए, तो एक ही तरीका है, रसवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। क्योंकि आत्मा का स्वरूप है रस का आस्वादन करना। हम भगवान के अंश हैं, कृष्ण रसराज हैं, उन्होंने अपने आप को विस्तृत किया रस का आस्वादन करने के लिए जीवों के साथ। जैसा एक पति पत्नी शादी हो गया, ठीक है, खुश है, फिर बच्चे क्यों पैदा करते? द मोर द मेरियर, जितना ज्यादा है उतना आनंद ज्यादा है। तो इस तरह से भगवान आत्मा राम है, पर अपने आप को विस्तृत किए अनंत आनंद का, रस का आस्वादन करने के लिए। जब तक वो रस नहीं मिलेगा, तब तक, जब तक भक्ति रस नहीं मिलेगी, तब तक ये रस, भौतिक संसार का जो रस है, इस रस को त्यागना नामुमकिन है। और बाय चांस किसी कारणवश आर्टिफिशियली अगर कोशिश भी करेंगे तो फिर से चले जाएंगे वापस। इसीलिए मायावादी लोग पूरे संसार को त्यागते हैं, फिर भी वो उल्टी किया उसी को चाटने के लिए फिर से वापस आते भौतिक संसार में। क्यों? क्योंकि रस का आस्वादन नहीं मिल रहा उन लोगों को। अभी मन जो है एक मक्खी के समान है जो कचरे में जाके बैठ रहा है, पर जब तक ये मन को मधुमक्खी नहीं बनाते जो भगवान के चरण कमलों के, कमल के जो रस है उसका आस्वादन नहीं करेगा, तब तक ये रस नहीं छूटेगा। तो इस रस को कैसा प्राप्त किया जाए? भगवान अर्जुन ने कहा, चंचलम भी मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हम लोग जप कर रहे हैं पर मन क्यों क्यों जाता है दूसरी जगह? क्योंकि मन को उधर रस मिल रहा है, यहां रस नहीं मिल रहा है हमको। श्यात्कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पित्त उपतप्त रसदस्य न रोचिकानु। जब करते वक्त ही मन क्यों उधर जाता है? जहां रस मिल रहा है वहां जा रहा है, अब यहां रस नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यस, अभी हमारा मन जो है वो मक्खी के समान भौतिक संसार के चीजों में रस मिल रहा है उसको, वहां से मधुमक्खी जैसा भगवान के चरण कमल के रस जो है वो आस्वादन जब तक नहीं मिलेगा। अच्छा, वो नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए? तो वो रस प्राप्त करने के लिए जो भी अनुकूल है उसको अभ्यास करो, जो भी प्रतिकूल है उसका वैराग्य। इसी का मतलब ये है, अभ्यास ही न तो कौनते वैराग्य न चग्रह। अभ्यास का मतलब जो भक्ति विनोद ठाकुर यहां कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में बहुत सुंदर रूप से कह रहे हैं, यही सबसे बड़ी तपस्या है। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहा प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करो ये तहा। ये इसमें हमारा सुख है, इसमें हमारा आनंद है, आ नहीं रहा है तपस्या, ये सबसे बड़ी तपस्या है। चाहे अच्छा लगे या ना लगे, शास्त्र के आधार पर हमको मालूम है कि ये रस का सागर है, भक्ति रस अमृत सिंधु। दूसरा रस जो है वो चपल सुख है, आज जो सुख है कल उसमें उब जाएंगे, मृत्यु के बाद निकल जाएगा ये रस। तो भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहा, भगवान ये कह रहे अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चग्रहते। अभ्यास का मतलब जो जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो, अनुकूल ये संकल्पो, और जो भी प्रतिकूल है वैराग्य उसे त्याग दो। चार नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं। अब सिर्फ आप एक आदमी को जाके बोलो ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, तो बोला तुम जो बोलेगा वो भी नहीं करूंगा मैं। पर उसको एक ऑल्टरनेटिव तो दो। जनरली लोग है ना, हम लोग नहीं करने वाले चीजों को बोलने में बड़ा उत्साह है हम लोग को। अरे जो करना है वो तो बताओ पहले, अपने आप छूट जाएगा। साधारणतः एक व्यक्ति से पूछा गया तो कृष्ण भावना का मतलब क्या? अरे हजार चीज बोल सकता, वो नहीं बोला, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, ये नहीं, वो बोला तुम्हारा कृष्ण भावना भी नहीं हमको। अरे एक भिखारी है, भीख मांग रहा है, भूखा है, उसको किसी ने एक सूखा रोटी दिया, खा रहा है, और आप जाके बोल गए छी सूखा है ये रोटी है, ये तो इसमें कुछ यही भी नहीं है, तो बोला तो करू क्या, फेंक दो इसे। और फिर तो तुमको उठा के फेंकूंगा, समझा? बेचारा कुछ तो खा रहा है, उसको भी बंद करा रहे उसको। उससे अच्छा है उसके सामने एक छप्पन भोग का प्लेट रख दो, उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो छप्पन भोग का प्लेट देखेगा तो अपने आप फेंकेगा उसको और ये खाएगा। जब तक उसको भगवान की भक्ति का रस का आस्वादन नहीं देंगे और बोले ये छोड़ दे छोड़ दे, क्यों छोड़ेगा वो, कुछ तो रस मिल रहा है बेचारे को, वो भी बंद करा रहे उसके आप। तो प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करो ये तहा, ये तपस्या सबसे बड़ी तपस्या। अभी रस नहीं है, चाहे कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पित्त उपतप्त रसन से नरोचिकानु, किंतु आदराद अनुदिनम श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक अनुदिनम हर रोज खलुसैव जुष्वा करेंगे उसको, बस स्वादवी क्रमाद भवती, क्रमशः उसमें स्वाद आ जाएगा। और उसको स्वाद का सबूत क्या है? जो भी कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसमें से रस छूट जाएगा, और जो भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है उसमें रस आ जाएगा। और यही तपस्या है, हमको अच्छा लगे या ना लगे, एक्चुअली ओरिजिनल रस इसमें है, भक्ति रस अमृत, मृत्यु पर भी रुक नहीं सकता ये, और सिंधु, ये तो समुद्र है ये। भूत्वाधीन गणेश कौ करुणया कौपीन कर, गोपी भाव रस अमृत अवधि लहरी कल्लोल मग्नो मुहूर। क्यों ये सब त्याग कर दिए? श्रील प्रभुपाद ने कहानी बोला 1920 में, इंडिपेंडेंस से पहले एक व्यक्ति था सीआर दास, चित्तरंजन दास, बहुत बड़ा लॉयर। उसको 1920 में अंग्रेज सरकार के नीचे 60,000 रुपया मिलता था हर महीने का। सोचिए 60,000 रुपया 1920 में, करोड़पति था वो, हमेशा पैसे हजार हजार रुपये लेके घूमने वाला। और गांधी जी ने बोला अंग्रेजों का सेवा छोड़ दो, तो उसने बोला मैं 60,000 रुपया आपको दूंगा कांग्रेस के लिए दूंगा, पर ये मत बोलो। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम चाहिए मेरे को। तो बेचारा छोड़ दिया, छोड़ के आ तो गया। तो सरकार ने बोला चलो, गवर्नमेंट ने बोला चलो उसको 500 रुपया देते। एक्चुअली 6 महीने के अंदर वो मर गया, रह नहीं पाया। उसका लाइफस्टाइल ऐसा था कि 6 महीने के अंदर वो घुट घुट के मर गया अंदर। पर अरबपति 500 साल पहले रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका सारा संपत्ति बड़े बड़े बोट में सोने की मोहरे भी डाले तो दो दो बोट जैसा था। एक क्षण के अंदर, एक दिन के अंदर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने सब कुछ त्याग दिया। कौपीन कंठाश्रित हो, पर वो मरे क्यों नहीं? रघुनाथ दास गोस्वामी छाप भी देते तीन दिन में एक बार, मरे क्यों नहीं वो? कुछ तो खाना चाहिए ना, खुराक कहां मिल रहा था उनको? वो बाहर का खुराक नहीं मिल रहा था, अंदर से मिल रहा था उनको। गोपी भाव रस अमृत अवधि, अवधि मतलब समुद्र, विप्रलंब रसाम्बोधे, रस अम्बोधे। गौरकिशोरदास बाबा जी भी कहा जाता है कि ये जो मनुष्य का खोपड़ी है ना, खोपड़ी का ये जो उल्टा हिस्सा है, उस खोपड़ी के अंदर जमुना का पानी या गंगा का पानी, जब कभी वो थोड़े समय वृंदावन में, थोड़े समय मायापुर में रहते थे, तो जब वहां रहते थे जमुना या गंगा, एक मुट्ठी चावल वो खोपड़ी में डालते थे और जमुना का पानी में रात को रखते थे, सुबह उसको पीते थे, खा लेते थे। आप बोलेंगे खोपड़ी क्यों भाई? वो इसलिए याद दिलाने के लिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। पर ये लोग जीवित कैसे रहे? हम लोग 4 दिन ऐसा करेंगे मर जाएंगे, जीवित कैसे रहे? गोपी भाव रस अमृत अवधि लहरी कल्लोल, वो डुबकी लगा रहे थे रसो भक्त रसामर सिंधु में, और रस का आस्वादन करते हैं। हमको भी रस, शरीर के लिए रस चाहिए, कुछ तो जूस चाहिए, आम रस, नीम रस, कुछ तो चाहिए। कुछ भी खाते हैं वो रस बनता है उसका एक्चुअली, और भौतिक रस नहीं मिलेगा तो मर जाएगा आदमी। कुछ तो रस मिलना चाहिए, आध्यात्मिक रस। तो ये हमारी तपस्या है, भक्ति रस। भक्ति रस किसमें है? सबसे पहला है नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध हो नित्य मुक्त हो अभिन्नत्वाद नाम नामिना। श्री चैतन्य महाप्रभु की खास कृपा है कि उन्होंने नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, चैतन्य रस विग्रह, इसमें रस है, हरिनाम है, रसगुल्ला है एकदम, पर हमको रस नहीं मिल रहा है। ये रसगुल्ला है, हर सुबह आपको बोला जाए 16 रसगुल्ला खाना ही पड़ेगा आपको, आपको ऑफिस जाने से पहले 16 रसगुल्ला, कौन किसको अच्छा नहीं लगेगा, पर हमको 16, और एक एक रसगुल्ले में छोटे छोटे 108 छोटे छोटे गुल्ले हैं। पर हमको बोझा लगता है, बाप रे 16, हरे कृष्णा। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का विग्रह है वो, पर हमको टेस्ट नहीं है अभी, इसीलिए तपस्या है हमारे लिए। और दूसरा रस, भौतिक संसार का रस, वाह कैसा, अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल है। स्वाभाविक रूप है ये, पर यही तपस्या है। अभ्यास ही न तो कौनती है, वैराग्य न चिगृहते। और दूसरा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम अरे रस का भंडार ही भागवत। एक्चुअली श्रीमद भागवतम पिबत भागवतम रसम आलयम, ये भंडार है। और चाबी दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने, खोलो। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल पुराण, इसमें धर्मार्थ काम मोक्ष का कोई ये नहीं है। शुद्ध रस भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, और उनका रसमय आदान प्रदान। रस एक बार चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद समझाते हैं, व्हाट इज रासलीला। रासलीला का मतलब क्या, तो डंडा लेके बस ऐसा ऐसा ठोकते रहना। रासलीला का मतलब भगवान और जीव में जो रस है उसका आदान प्रदान। भगवान नित्य है, जीव नित्य है, आध्यात्मिक संसार नित्य है, और उस नित्य आध्यात्मिक संसार में नित्य भगवान के साथ नित्य जीव का नित्य लीला, रसमय आदान प्रदान, भक्ति रस। ये एक्चुअली जो आदान प्रदान कर रहा है वो रासलीला में है एक्चुअली। इसीलिए एक पिक्चर आप देखेंगे, इस्कॉन का एक पिक्चर है जहां राधा रानी कृष्ण की सेवा कर रही है ऐसा, और नीचे वही रूप में राधा रानी की जगह श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन एक्चुअली रासलीला है। इट्स नॉन डिफरेंट फ्रॉम रासलीला। द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम गिव्स अस डायरेक्ट एंट्रेंस इन टू रासलीला ऑफ कृष्ण, डायरेक्ट हरिनाम संकीर्तन। तो पिबत भागवतम रसमालयम, नित्यम भागवत सेवया, हर रोज पीना चाहिए, आदत होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और तीसरा भक्ति रस, भक्ति रस भगवान के सेवा का रस, एक्चुअली उसमें रस है। इसीलिए कपिल मुनि देवहूति माता को कहते हैं, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य ऐकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। हे माता, उन नारायण पारायण भक्तों का क्या कहना, उनको आप सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य सायुज्य पांच प्रकार की मुक्ति हमेशा के लिए भौतिक संसार से निकलने का अगर आप दोगे, दीयमानं जबरदस्ती उनके हाथ में दोगे भी, न गृहणंती वो स्वीकार नहीं करेंगे, अगर विना मत सेवनम जना। आपको भगवत धाम जाने को मिलेगा पर वहां सेवा नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ रहने का बस, नहीं चाहिए तुम्हारा भगवत धाम, यहां मैं सेवा करूंगा चलेगा। ऐसा क्या चीज है सेवा में जो एक्चुअली उसका रस का आस्वादन हो रहा है, हमारे लिए बोझा है वो सेवा, चाहे वो पुस्तक वितरण हो। एक्चुअली वी डोंट रियलाइज, हम थोड़े दिन पहले अदनंद स्वामी महाराज एक लेक्चर उनका एक कहीं तो बोले पता नहीं उसका एक इसमें आया था, मैं देख रहा था, नेक्टर बोल के उसमें से शेयर किया था। वो बोल रहे थे एक्चुअली हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हम समझे या ना समझे, पर परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्ट धर्म संस्थापना था, ये भगवान का वैयक्तिक काम है, ये दिस इज द मिशन ऑफ कृष्ण। तो उसमें कोई भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली छोटा मोटा जो भी एक्चुअली काम कर रहा है ना, डायरेक्टली भगवान का सेवा। और जब करेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली भगवान उसमें टेस्ट देंगे, उसमें टेस्ट है, उसको जो रस जिसको मिल गया। आज सुबह हमारे दयासार प्रभु को मैं देख रहा था, ये ऑल्टर को सेट करते हुए सुबह सुबह उठ के एकदम फर्स्ट क्लास सज धज के, और क्या है एक्चुअली तीन डब्बा है, एक्चुअली कार्डबोर्ड का डब्बा है वो ऑल्टर, पर इतना उत्साहपूर्वक वो सब निकाल के एकदम साफ किया, फिर उसको ये लगाया। सिर्फ उनको देख के कोई भी देखेगा तो बोलेगा इसमें इतना खुश से कर रहा है तो कुछ तो होगा। अमेरिका में अपने जयानंद प्रभु प्रभुपाद डिसाइपल, आपको ये जयानंद भी कोई काम नहीं है ये जयानंद प्रभु इतना उत्साह से वो कुछ करते थे कि लोगों को लगता था इतना उत्साह से कोई इसमें कुछ तो आनंद है। इवन मंदिर का सारा जो कचरा था उसको उठा के फेंकने में इतना उत्साह से कचरा फेंकते थे, तो बोलते थे एक लोगों को लगा कि ये कचरा फेंकने वाला, मंदिर का कचरा फेंकने वाला इतना आनंद पूर्वक रहता है तो इसमें जो निवास करते हैं वो लोग तो बहुत आनंद होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सेवा एक्चुअली लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को भी उपलब्ध नहीं है, डायरेक्ट भगवान का सेवा। और वो सेवा श्री चैतन्य महाप्रभु ने आमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश जा रहे को तारे कहो कृष्ण उपदेश हमको दे दिया, चलो जो भी ये करेगा हमें, हम जाने या न जाने, समझे या न समझे, माने या नहीं माने, मंदिर में झाड़ू मारना ये ब्रह्मा जी को भी उपलब्ध नहीं है। बोले क्या? आपको लगेगा आप मंदिर में झाड़ू मारोगे या इंडिया का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनोगे? क्या बोले? कोई भी दूसरी समझ, कोई किसी और से पूछोगे तो बोले पागल हो गया। देखो भाई तुमको दो चॉइस है, या प्रधानमंत्री, कोई इलेक्शन इलेक्शन कुछ नहीं, परमानेंटली जब तक तू जीवित है तब तक प्रधानमंत्री, जब तक तू कुर्सी नहीं छोड़ता तब तक तू प्रधानमंत्री, या राधा गोपीनाथ मंदिर में हर रोज सुबह 5 बजे झाड़ू लगाना। कोई ये चॉइस है? ये बाहर की दुनिया लोग नहीं पागल है एक्चुअली। बाहर कोला में श्रीधर कुशी चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? अष्ट सिद्धि चाहिए, नवनिधि चाहिए, ब्रह्मा जी की पदवी चाहिए, इंद्र की पदवी चाहिए, अरे गोलोक धाम में प्रवेश चाहिए। कोलावेच सिद्धर ने बोला नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप आते रहो और मेरा दिमाग खाते रहो, हर रोज 2 घंटा झगड़ झगड़ के, झगड़ झगड़ के सारा मेरा किला, किले का पत्ता छीन ऊन के ले जाओ, उसमें जो आनंद है प्रभु, अगर मैं गोलोक जाऊंगा आप वहां नहीं तो नहीं चाहिए मेरे को। क्या फायदा? आपको पूरा मंदिर मिलेगा पर डीटीज को उठा के हम लोग ले जाएंगे तो क्या करेंगे? वो तो उसको क्या चाटेंगे मंदिर को? मैं जाए धाम आम नहीं चाहिए, जहां आप हो वहां। गदाधर पंडित ने यही कहा श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे भाड़ में जाए मेरा क्षेत्र संन्यास, आप चले जा रहे हो, आप जहां हो वो वृंदावन है, जहां आपकी सेवा है वो वृंदावन है, मुझे नहीं चाहिए एक ब्रह्मा की पदवी, नहीं चाहिए कुछ भी, नहीं चाहिए मेरे को एक्चुअली। क्या हमको ये साक्षात्कार है कि जब हम ये छोटा सा, एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ने एक क्लास दिया 45 मिनट बोल रहे थे कि भगवान के लिए आलू छीलना 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद आपको ये भगवान के लिए आलू छीलने का एक आधा घंटा उसके ऊपर बोले कि ये आलू को मैं भगवान के लिए छील रहा हूं, भगवान को भोग लगेगा क्या? हम उससे समझते हैं ऐसा? ये मौका जो है ये बड़े बड़े देवताओं को भी नहीं मिलता, और वो सेवा हमको है। क्या इतना सेवा प्रभु जी? और किसी और को दे देना। ऑफकोर्स कहना बड़ा आसान है इसको, पर शास्त्र के द्वारा कम से कम समझना चाहिए। यही बोल रहे हैं कि माधवती थी भक्ति जननी जतन पालने कोरी। माधव तिथि एकादशी जो है भक्ति जननी, जननी मतलब क्या? जो जन्म देती है। माधव तिथि एकादशी जो है भक्ति को जन्म देती है, वो भक्ति की माता है। जतने पालन कोरी, उसको अगर कोशिश, पूरा कोशिश करेगी अच्छी तरह से पालन करने में, क्या क्या करने में? यही भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहां प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करो यथा। बड़े सुखपूर्वक करोड़ों जन्मों से हम लोग इसके लिए ढूंढ रहे हैं, देवता लोगों को भी जो उपलब्ध नहीं था, महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मुफ्त में दिया गया है, और वो हमारे लिए बोझा लग रहा है। कितना दुर्भाग्य है हमारा, जिसको जिसको नहीं मिला चलेगा, पर जिसको मिला पर लापरवाही से वो खो दिया, अधोगति, परम दुर्भाग्य। सो ये एक्चुअली वैराग्य है। वैराग्य का सही मतलब ये है कि जो भी भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है, चाहे जितना इंद्रियों को, मन को या अहंकार को अच्छा क्यों ना लगे, उसको हम निकाल देंगे, पर वो कृत्रिम रूप से तब तक नहीं होगा जब तक अभ्यास है ना, तो कौन थे या? जब भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल है, जो एक्चुअली हमारे आत्मा के लिए बहुत अनुकूल है, प्रिय है और खजाना है एक्चुअली, जो सच्ची में परम सुख है, परम सुख देने वाला है, उसको अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हाथ में ये नहीं भर जाता। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है, अभी पता नहीं पर पुराने इसमें एक नारियल का डब्बा आता था, खोपरे का तेल का डब्बा, उसमें ढक्कन नहीं था, दोनों डब्बा सील ऊपर से पूरा पैक, उसको अब एक छेद करो निकलेगा नहीं, उसमें से दो छेद करना पड़ता है, तो दूसरा छेद तो थोड़ा हवा जाएगा तो इधर से निकलेगा। इस तरह से अगर हमारा पूरा दिन भगवान की सेवा में पैक हो जाए तो माया को अंदर आने का टाइम ही नहीं है। ये छठ गोस्वामी ने कैसा ये आस्वादन प्राप्त किए, श्रीनिवास आचार्य लिखते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार का दिविजितो चात्यंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी कालावसानी कृतो, अपना काल जो था समय दिन का संख्या पूर्वक उन्होंने नियम बनाया था, संख्या पूर्वक नाम गान नटी भी, इतना नाम इतना सेवा इतना रूप इतना गुण इतना पढ़ाई जो भी है, कालावसान इस तरह से निद्रा आहार विहार कादि विजितो, जब तक इतना मारा नहीं हो सोगा कैसा मैं, कई शायद तो दो घंटा कुछ सोते थे वो कैसे, क्योंकि अभी तक जैसा हरिदास ठाकुर ने बोला, मैं कैसे खा सकता हूं अभी कुछ जब तक मेरा नियम नहीं हुआ। सो निद्रा आहार विहार काद विजितो, इस तरह से उन्होंने जीता हो, अत्यंत दीनो चय, निद्रा आहार विहार काद विजितो चात्यंत दीनो चय, राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर मधुरिमा, उस माधुरी का आस्वादन करते हुए, रस का आस्वादन करते हुए नंदेन सम्मोहितो। तो इस तरह से महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से ये उपलब्ध, ये मौका हमें उपलब्ध है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम रस, रस राज श्री कृष्ण के संपर्क में दे दिया है हमको, पर अभी हमको अभ्यास ही न तो कौंतेय वैराग्य न च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना ये अभ्यास, और जो प्रतिकूल है उसको धीरे धीरे, जब अनुकूल चीजें स्वीकार करेंगे हमारे जीवन में तो प्रतिकूल चीजें धीरे धीरे अपने आप चले जाएगी, कृत्रिम रूप से करने की जरूरत नहीं, अपने आप थोड़ी बहुत चेष्टा कर सकते हैं हम लोग, पर अंदर से तब जाएगा जब अंदर से कुछ और भरेगा वहां। इसीलिए अपने पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि कहते हैं, दूसरा वाला कौन है ना, चौथा श्लोक उसका क्या भूल गया, स्टार्टिंग क्या है उसका, नमामिश्व, हाँ, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेषादपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्ताम किमन्य। और क्या चाहिए मेरे को, मेरे को वरम देव मोक्षम, मोक्ष में नहीं चाहिए, मोक्षावधिम वा, मोक्षावधिम वा, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आई डोंट इवन वॉन्ट एंट्रेंस टू गोलोक और एनीथिंग दैट इज अचीवेबल बाय 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो भी नहीं चाहिए मेरे को, भक्ति से प्राप्त होने वाले जो 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 चीज है वो भी नहीं चाहिए, क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत वो भी नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को बस आप ये जो ये सुंदर बाल लीला है उसमें मुझे रस दे, बस। जगन्नाथ अष्टक में भी ऐसे, नचे राज्यम वाणिक्यम विभवम सदा श्रीमद वृंदावन लीला परिसरो, सारे अष्टक ये जो महान भक्त लोग हैं गाए हैं उनमें यही है कि ये रस का एक थोड़ा आस्वादन हो जाए, जिसको भी उसका आस्वादन हो गया तो फिर ये भौतिक रस जो है चपल सुख रस अपने आप छूट जाएगा। कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे इस रस में आस्वादन धीरे धीरे प्राप्त किया जाए, अनुकूल संग से, अनुकूल चीजों से, अनुकूल कार्यों से। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी दामोदर अष्टकम करेंगे।